प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत सहे गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिन कुंजा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वै भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंधनम। सोहम सुरति समाप तुम सकल समाना निरतल। उज्ज्वल हीरंबर हरदम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मद्दतम। गरीब जो सुमरै सिद्ध होई गण नायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गण नायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋद्धिदाता सोई। अवगत गुणे अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पु शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राजावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ही उतरे बौद्धल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करूं दरू चरण पर शीश। गुरु जी नाम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बंदी जा में गुलाम। कुत्ता हूं गुरुदेव का रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोभा जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सोखूं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिल लेंगे पूछेंगे कुसलात, आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाहीं। कबीर तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारद तिनके हृदय न समान, अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन उतार, अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूं, बोर पिता को नाज। मैं अपराधी जन्म का नक्श कबरे विकार, तुम दाता दुख बंजना मेरी करो सवार। सूरत करो मम साईया, हम हैं भव जल माही, आप ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे बाण। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़, जैसे काग जहाज का सूजत और न ठोर। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब की असीम कृपा से आप जी सत्संग के अंदर पहुंच पाए। जिन पुण्यात्माओं के बहुत ही जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं वो प्रभु के विशेष कृपा पात्र होते हैं। आप उन्हीं पुण्य प्राणियों में से हो जो रह रहकर आपको परमात्मा काल से जमानत करवा के यहां अमृतवाणी की आपको वो उच्चार करवाते हैं। मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे, लख चौरासी माह सतगुरु सेवा और ये बंदगी, भाई फेर मिलन की ना। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म स्वयं ही आकर के आप जी को चेता रहे हैं, समझा रहे हैं कि मनुष्य जीवन पाए कर नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। काल भगवान ने हमारे को वास्तविकता से अपरिचित रखा हुआ है। हमें ये ही नहीं मालूम हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या उद्देश्य है हमारा। हम जिस क्रिया में समर्पित हैं, जिन कर्मों में हम समर्पित हैं, ये किस उद्देश्य से हम कर रहे हैं। हम प्रतिदिन मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने परवरिश बच्चों की परवरिश करने के लिए, अपने पेट के लिए, और मकान बनाते हैं अपनी सुख सुविधा के लिए, और जिन बच्चों को हम सुखी देखना चाहते हैं, जिनके लिए हम दिन रात मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हीं का नहीं पता कब यहां से मृत्यु हो जावे, देहांत हो जावे। तो हम इस विषय पर विशेष चिंतन नहीं कर पाते, केवल रोना ही शेष रह जाता है। रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो जाता है और फिर अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि भी यहां तो सभी के साथ ऐसा ही होता है। सांत्वना देते हुए कहते हैं कि देखो उनका पेट की पुत्र था, वो तो मृत्यु को प्राप्त हुआ, आपके तो तीन हैं, एक ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। तो ऐसे संतोष कर लेता है वो व्यक्ति जिसके तीन पुत्रों में से एक की मृत्यु होगी। कैसे संतोष कर लेता है कि उसको बताया जाता है कि देखो अमुक व्यक्ति का एक ही पुत्र था, वो भी मृत्यु को प्राप्त। शांत हुए, समय आने पर कुछ दिन में ये जख्म भर जाता है, फिर उसी स्पीड को फिर पकड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। परमात्मा हमें आकर के याद दिलाते हैं कि ये काल की भूल भुलैया है। इस काल भगवान ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्म को एक श्राप लगा हुआ है, इसको एक बीमारी लगी हुई है, जिसके कारण ये 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करता है। ये ऊपर स्थूल शरीर यूजलेस है उसके लिए, जैसे काजू, जैसे बादाम के ऊपर गिरी अंदर होती है, ऊपर उसके कवर होता है, तो कवर खाने का नहीं होता, उसके अंदर गिरी बन जाती है, वो खाने की होती है। ऐसे ही इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। हम सारे जीवन में जो भी खट्टे मीठे चटपटे आहार करते हैं या कोई अन्य व्यसन करते हैं, उन सब का सूक्ष्मांग सूक्ष्म शरीर के ऊपर जाकर के लग जाता है। ये ऊपर का जो कवर छिलका रह जाता है यहां पर स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर को तपतशिला के ऊपर ये काल डाल के इस प्राणी को तड़फाता है, इसमें से गंध निकालता है, सारे जीवन का इसने जो प्रयोग किया है उसको फिर ये बड़े आनंद से खाता है। पुण्यात्मा आप यहां भी देखते हो, ये मांस खाते हैं, कोई मुर्गा काट दिया, मुर्गा तो चिल्ला रहा है, तड़फ रहा है, बकरा है, बकरा काट लिया, उसको मांस बना रहे हैं, खाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उधर बकरा चिल्ला रहा था, उधर बकरे के बच्चे भी चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि जब बकरों में से किसी एक को निकाल कर कसाई ले जाता है, बाकी काफी देर तक म्या 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 करते हुए एक दूसरे से चिपकते रहते हैं, छुपते रहते हैं, तो रो पीट कर वह चुप हो जाते हैं। अब एक बकरे की जान गई और खाने वाला टेस्ट उंगली चाट रहा है, बहुत अच्छा मीट बना है। तो ये काल भगवान जो मन रूप में है, ये काल भगवान ही है, उसी का एजेंट है। तो ऐसे जैसी क्रिया ये खुद कराता है, फिर उसी का टेस्ट और सूक्ष्म रूप बना करके ये सूक्ष्म शरीर में पहुंचा देता है, उसको फिर ये 21वें ब्रह्मांड में बनी तपतशिला के ऊपर भून कर ये काल भगवान उसमें से गंध निकालकर खाता है, पीता है। इस उद्देश्य से इसने हमें वास्तविकता से दूर रखा हुआ है। आज तक न तो कोई ऋषि क्लियर कर पाया कि कौन भगवान है, कैसा है, कहां रहता है, और हम और आपकी तो औकात क्या कि हम इस काल के जाल को समझ सके। परमेश्वर ने आकर के ये काल का जाल हमें समझाया, उसके लिए हमें रह रहकर बताया है इस जीव को कहते हैं कि तू जिस भी व्यवस्था को अपनी मानता है, जैसे कार मानता है, कोठी मानता है, बेटा या बेटी अपनी मानता है, ये तेरी महाभूल है। परमात्मा ने फिर ये कहा कि तुम ये जो भी तुम्हारा संस्कार है, जिस भी अभिनय करने के लिए आपको भेजा गया है, उस अभिनय को सकुशल करते हुए, यानी बेटा है तो बेटे वाला रोल ही करे, बाप है तो बाप का रोल भी वो सुचारू रूप से करे, माँ है माँ का रोल करे, बेटी बेटी का करे, ऐसे करते हुए परमात्मा की याद हृदय से जा नहीं। उसके लिए क्या बताते हैं, पानी की जल बूंद से साज बनाया जीव, अंदर बहुत अंदेश था बार बिसरिया पीव। एक स्वभाव है प्राणी का, जिसमें इस पर आपत्ति आती है उस समय तो परमात्मा को याद करता है, आपत्ति टल जाने से तुरंत ही खुशी मना करके ये अन्य वस्तुओं को याद करता है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होए। परमात्मा कहते हैं कि भाई दुख आ जाता है, आपत्ति में तो सभी प्रभु याद करते हैं लेकिन सुख में नहीं करते, और जो सुख में करेंगे तो उनको दुख नहीं होगा। पुण्यात्माओं, इसमें बहुत सी बातें आ जाती हैं। वैसे तो सभी कोई राम राम कह रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह कह रहा है, कोई ओम ओम की रट लगा रहा है, कोई ओम नमः शिवाय, कोई किसी प्रकार के मंत्र, कोई किसी प्रकार के जाप कर रहा है, और उन पर भी आपत्तियां घोर आ जाती हैं और उनको सब हानि पहुंचा जाती है। फिर वो सोचते हैं कि देखो ये तो सुख में भी भगवान को याद कर रहा था, फिर भी चोट इसको हानि होगी, नुकसान हो गया, परिवार में भी हानि होगी, उसका कारण क्या था कि वो शास्त्र विधि रहित साधना थी, और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण जो करते हैं, मनमानी पूजाएं, मनमाने मंत्र जाप करते हैं, साधनाएं करते हैं, तपस्याएं करते हैं, वो यूजलेस हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अपनी सब इच्छा से मन गणित दो जाप मंत्र आदि कोई क्रियाएं करते हैं भक्ति की, न तो उनसे कोई लाभ होता है, न तो कार्य सिद्ध होता है, न उनकी गति होती है, न ही उनको कोई सुख प्राप्त होता है, और इन तीन वस्तुओं के लिए ही हम परमात्मा की साधना उपासना करते हैं। दूसरा कारण यह है कि जैसे आप जी ने शास्त्र अनुकूल साधना भी प्रारंभ कर रखी है, उपदेश ले रखा है, आपके घर में सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, कोई दुख नहीं है जिसको आप दुख मानते हैं संसारिक, और फिर आप साधना भी कर रहे हैं और फिर भी आप पर आपत्ति आएगी, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि आपने मर्यादा भंग की होगी, आपसे मर्यादा भंग हो गई है, या फिर कोई भयंकर आपत्ति थी, वो भयंकर आपत्ति और अलकी होकर टल गई। परमात्मा बताते हैं कबीर जी, कबीर सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो वा काटे में टल जा। सूली मीन सजाए मौत, जैसे फांसी दे देते हैं ऐसे एक पहले सूली देते थे, सूली तोड़ते थे उसको, भी सूली तोड़ दिया, उसके एक बहुत लंबा सुआ होता था, उस गज टाइप सरिया सा, वो आर पार निकाल देते थे, विषाक्त होता था, वो व्यक्ति जिसको सजा दी जाती थी उससे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तड़प तड़प के, उसको सूली तोड़ना कहते हैं। तो पुण्यात्मा दो कारणों में से कोई ऐसा भी हो सकता है यदि आपत्ति आती है, तो कारण है कि एक तो कारण है कि या तो कोई घोर आपत्ति थी वह हल्की होकर टलेगी, जान जानी हो टांग टूटगी, ये भी परमात्मा की कृपा ही समझो। और दूसरी यह है कि आपने कोई क्रिया भंग कर रखी होगी। जब तक हम परमात्मा की मर्यादा में नहीं रहेंगे तो हमारी रक्षा प्रभु नहीं कर पाएंगे। जो नियम आपको बताए गए हैं, ये साधनाएं नहीं करनी है, इस प्रकार की क्रियाएं नहीं करनी है, शराब मांस तंबाकू को प्रयोग नहीं करना है, इनमें से कोई सा भी आप कर लोगे तो आपका नाम खंड हो जाएगा, आपका कनेक्शन कट जाएगा। जैसे किसी भी कारण से आपकी बिजली का कनेक्शन कट गया तो पावर नहीं आवेगी। जिस बिजली से पंखे चले थे, पानी निकाल रहे थे बटन दबाते ही, पशुओं का चारा काट रहे थे, सन्नी काट लेते थे, आटा पीस लेते थे, सब सुविधाएं ठप हो जाएंगी, नहीं आपको मिलेंगी। तो वो कनेक्शन फिर पुनः जुड़वाना पड़ेगा आप जीने, तभी ये सब लाभ आपको पुनः प्राप्त होंगे। जैसे कोई खेल का मैदान होता है, बच्चे गेम खेलते हैं, उस खेल के मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों में से एक भी कोई भंग हो गया तो वो फाउल होते हैं, उनको खेल से बाहर कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार आप ही परमात्मा प्राप्ति रूपी गेम के खेल के आप खिलाड़ी सिलेक्ट हो गए हैं, आपको उपदेश मिल गया है, आपकी एंट्री हो गई है, और अब आप ठीक नहीं खेलोगे, फाउल खेलोगे तो आपको परमात्मा सहायता नहीं करेगा, आपको फाउल कर देगा, आपको गेम से बाहर कर देगा। ऑटोमेटिक कनेक्शन है। उसके लिए एक ही उपाय है कि आप भविष्य में ऐसी गलती ना करने का वचन करें, पुनरुपदेश लें, कनेक्शन फिर जुड़वाएं, बिजली का कनेक्शन पुनः चालू करवाएं, अर्थात पुनरुपदेश लें। क्या बताते हैं, संत शरण में आने से, सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो वा काटे में टल जा। पुण्यात्मा मानव समाज सत्संग से बहुत दूर रहा है अभी तक, और सत्संग जो लोग करते थे वो सत्संग से परिचित नहीं थे। कथाओं का सुना देना, पुस्तक पोथी पढ़कर जैसा वो जानते ऐसा अर्थ कोई कर देना, ये अलग बात है। जिस संत के पास पूर्ण मार्ग ना हो, नाम देने का अधिकार ना हो, उसके पास सत साधना ना हो, तो उससे उपदेश लेना भी व्यर्थ है, उसके द्वारा किया गया सत्संग भी व्यर्थ है। एक समय एक नगर के बाहर एक आश्रम था एक महापुरुष का। पुण्यात्माओं कहते हैं, सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, अरण्यक से पूजो मार दो नरसिंह धर हूं साज, अनंत कोट अवतार हैं, अनंत कोट अवतार हैं, ये नौचित हैं बुद्धिनाशे, खल्यक खेल खलक में छह ऋतु बारह मास। क्या बताते हैं गरीबदास साहेब जी, परमेश्वर कबीर जी से परिचित होने के उपरांत जिसमें उनका ज्ञान योग खुल गया था, उसके बाद तत्व ज्ञान प्रचार करते हुए बता रहे हैं कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के अनंत अवतार हो लिए, अवतार माने अंत बार वो अवतरित हो लिया अपने सतलोक से आकर। और ये मंदबुद्धि के लोग केवल नौ अवतारों तक सीमित है जो काल के पुत्र यहां अवतरित होकर आए हैं। अनंत कोटि अवतार हैं, नौ चित में बुद्धि नासे, ये खलक खेल खलक में छह ऋतु बारह मासे। खलक माने परमात्मा, इस खलक यानी दुनिया में, यहां दिन में भी कई कई बार आकर वापस चले जाते हैं अपने सतलोक में, अपने किसी भी भक्त पर भीड़ पर आपत्ति आती दिखे एक सेकंड में आते हैं उसके दूर करके सेकंड में चले जाते हैं। और कहीं भी वो परमात्मा किसी अन्य नाम से प्रकट होकर के कुछ दिन किसी क्षेत्र में रह करके एक संत रूप में भूमिका करके और कुछ क्षेत्र में अपने भक्तों को भक्ति जो है ना उसके उनमें प्रवेश करके फिर चले जाते हैं, फिर वो ढूंढे से नहीं मिलते। ऐसे लीला करते हुए परमात्मा बहुत बार ऐसे लीला कर जाते हैं जिस कारण से परमात्मा की स्थिति आज तक विद्यमान है। ये काल चाहता है कि इनको नास्तिक बना दूं, ये ऐसी भक्ति करें जिससे इनको कोई लाभ भगवान का ना हो और ये नास्तिक हो जाएं, फिर कभी भी भक्ति नहीं करें। परमात्मा स्वयं आवे या अपना कोई संत भेजे तो ये नास्तिक फिर सुनेंगे ही नहीं। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, कम्युनिस्ट बना दिया, और इधर से पूरा जो है ना रूस नास्तिक कम्युनिस्ट बन गए। नास्तिक का दूसरा नाम कम्युनिस्ट हो गया समझ लो। तो ये कहने का भाव ये है कि काल यही चाहता है कि ये सुने को ना इस परमात्मा के मार्ग ने इनको ऐसा कर दूं, क्योंकि भक्ति भी करते हैं उनको लाभ भी नहीं हो रहा है, फिर वो चोरी करने लग जाते हैं अपना धन इकट्ठा करने के लिए, कोई गम बुलाने के लिए घूंटी पीने लगाने लग जाते हैं। इस प्रकार इस मानव समाज को ये काल बिगाड़ता है और परमात्मा समय समय पर आकर के अपनी स्थिति को फिर कायम करते हैं, अपने भक्तों के हृदय में भगवान की स्थिति भगवान की महिमा को फिर पुनः स्थापित करते हैं, उनको ऐसे ऐसे सुख देते हैं। ऐसे लीला करते हुए परमात्मा संत रूप धार करके इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए कई स्थानों पर छोटे छोटे आश्रम बना रखे थे। उन आश्रमों में वो एक एक महीना प्रतिवर्ष एक एक महीना दो दो महीने रुककर आते थे और वहां के भक्तों को भक्ति मार्ग आशीर्वाद उनसे कुछ ऐसे पुण्य करवाते थे जिससे उनको इस जीवन रूपी सफर में आने वाले जो कांटे हैं पाप कर्म के वो हानि ना करें। उसी आधार से उन्होंने एक नगर के पास आश्रम बना हुआ था, वहां के बहुत से भक्त श्रद्धालु, एक गांव के पास बहुत से श्रद्धालु उस आश्रम में जाते थे। जैसे भी 20, 30, 50 जैसे वर्ग थे परिवार, 10-20 परिवार थे, वो परमात्मा के चाहने वाले उस आश्रम से संबंधित थे। तो जब संत गुरु जी आते थे, गुरुदेव जब आते थे उस आश्रम में एक महीना रहने के लिए, तो गांव के प्रत्येक प्राणी, पहले छोटे छोटे घर होते थे गांव में, नगर भी इतने बड़े नहीं होते थे, गांव में थोड़े थोड़े घर होते थे, तो उसमें प्रत्येक घर के सदस्य, प्रत्येक घर ने, यानी एक घर में जैसे कोई ने एक ने नाम ले रखा या पूरा परिवार भी लग जाते हैं धीरे धीरे, तो क्या करते थे जब संत यानी गुरुजी आते थे आश्रम में, महीना रुकते थे या दो महीना रुकते थे, तो वो क्या करते थे कि प्रतिदिन का आहार गुरुजी का और जितने आश्रम उनके साथ शिष्य थे दो का दो चार दस, उन सभी का एक दिन का आहार, एक दिन के भोजन एक ही परिवार करता था उनकी व्यवस्था, यानी घर से बनाकर ले जाते थे आश्रम में खिलाते थे दोनों समय। ऐसे उन्होंने अपना एक रन बना रखी थी। ऐसे चलता रहा तो एक दिन क्या हुआ कि एक बहन का नंबर आ गया, वो आश्रम के भोजन का। परमात्मा की लीला हुई कि उनका दूध फट गया, दूध खराब हो गया, और अपना नंबर पे सभी ये कोशिश करते थे कि अच्छे से अच्छा भोजन आहार भक्तों और संतों को कराएं। जैसे खीर तो मुख्य ही होती थी, उसने खीर बनाना था, दूध उसका खराब हो गया, तो उसने देखा कि यहां एक मेरे साथ में एक बहन रहती है, उसके भैंस है, ताजी ब्याई यानी अभी 10-20 दिन की वो भैंस है, उसके वहां गई। क्योंकि कोई भी वस्तु जब मांगने जाता है व्यक्ति, तो पहले कुछ भूमिका बनाता है, कुशल मंगल पूछता है। जो ही उस सत्संग में जाने वाली गुरुमुख बहन ने उस नए सत्संग में जाने वाली बहन से प्रार्थना की कि कुशल मंगल पूछा कि ठीक हो, परिवार कैसा है, ठीक है, तो उस बहन ने कहा, जो उपदेशी नहीं थी, उसने कहा कि बहन कुछ भी ठीक नहीं, पहले तो मेरे पति की मृत्यु होगी थी। तो उस बहन ने कहा कि बहन आंखों में आंसू भरकर रोते हुए कहने लगी कि मेरे भाग में सुख कोना, पहले पति की मृत्यु हुई, इकलौता पुत्र है आपको पता ही है, और छोटी ही उम्र का था ये, तभी इसके पिता की मृत्यु होगी थी, और मैंने यही जानकर पुनर्विवाह नहीं करवाया कि मेरे बेटे को दुख ना हो जाए, पुत्र इसने अपना पाल पोस के बड़ा कर लूंगी और ये आगे चलकर मुझे सुख देगा। अब पति का गम भूली थी, बच्चा युवा होने लगा था, अब ये बच्चा भी निकम्मा हो गया, शराब पीता है, रात को इसकी इंतजार करती रहती हूं, ना जाने कब ये आकर के विश्राम करता है और सुबह निकल जाता है, पैसे मांगता है, शराब पी जाता है और कोई नशीली वस्तुएं खाता है। अब मेरा तो जीवन नरक हो गया है, बहुत बुरी तरह रो रही है। तो उस बहन ने कहा कि बहन मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूं कि आप हमारे सत्संग में चला करो, गुरुजी आए हुए हैं, आप भगवान के विचार सुनोगी, परमात्मा की चर्चा सुनोगे, आपका दुख दूर होगा, जो हो लिया सो हो लिया, पर आगे भगवान आपकी बहुत मदद करेंगे, आप गुरुजी से उपदेश ले लो। इस बात पर वो बहन कहने लगी जिसने उपदेश नहीं ले रखा था कि मैं पहले तो विधवा, मेरा पति नहीं घर पे, और मैं सत्संग में जाऊंगी तो गांव वाले पता नहीं के मुंह बनावेंगे, क्या क्या चर्चा करेंगे, ये तो बिगड़गी, इसका पति को नहीं है, ये तो निकम्मी है, और देवर जेठ ये सब ताने मारेंगे, मुझे पता नहीं किस दृष्टि से देखेंगे, मैं नहीं ले सकती उपदेश वगैरह, मैं नहीं ले सकती। तो चलो ना हुई कोई बात नहीं। फिर उस बहन ने कहा कि बहन ऐसे मैं उपदेश ले रखा गुरुजी से, आज मेरा टर्न है गुरुजी को भोजन खिलाने का, आश्रम का भोजन देती हूं मैं, हमने अपना नंबर बांध रखा है, तो आज मेरा दूध खराब हो गया और मुझे दूध दे दे, चाहे उधारा दे दे और चाहे पैसे में दे दे, मैं भोजन करा के आऊंगी अपने गुरुदेव को, भक्तों को। तो उस बहन ने दूध निकाल कर खुट्टी पर टांग रखा था ज्यों का तू, उस न अनुपदेशी ने वो न्यों का न्यों बाल्टी उठा के उस बहन के पात्र में डाल दी, सारा का सारा, ले बहन ले जा दूध को। अब वो कहने की बहन कुछ तो रख ले इसमें से, कितना सारा ले जाते, ये कब कब अवसर मिला है मेरे को, मैं तो जा नहीं सकती कहीं पर, पुण्य कर नहीं सकती, आज भगवान ने दया करी है, तो सारा ले जा, हम श्याम वाले में गुजारा कर लेंगे। अब उस बहन ने सोचा जो उपदेश ले रखी थी कि देख कितनी अच्छी आत्मा है, मैंने उपदेश ले रखा है, जब मुझसे भी कोई मांगने आती तो 2 किलो तो जरूर रखती मैं, सारा नहीं दे सको थी, अरे कितनी प्यार पुण्यात्मा है, और सारा ही दे दिया भगवान के लिए। पुण्यात्मा ऐसे ही शुभ काम में सहयोग करने से पुण्य बनते हैं, और शुभ काम में बाधा करने वाले के पाप बना करते हैं। फिर धीरे धीरे इकट्ठे होते होते फिर यही कभी ना कभी अंगड़ाई लेते हैं। पुण्य किए हुए प्राणी को तो अच्छा पुण्य जन्म मिल जाता है, कई संत मिल जाता है, और पाप कर्मी प्राणी को फिर 84 लाख योनियों में कष्ट प्राप्त होता है। अब वो बहन खीर बना करके लेगी, गुरुजी को खिला दिया, भक्तों को आश्रम में खिला दिया, लेकिन उसके मन में ये रहा कि यदि इस ये बहन भक्ति पर लग जाए तो बहुत अच्छी आत्मा की है। तो कुछ दिनों पुण्यात्माओं धीरे धीरे वो पुण्य भी साथ देता है, कुछ पूर्वले संसार संस्कार होते पिछले जन्म के। एक दिन फिर वो बहन धीरे धीरे उनके घर जाने लगी, परमात्मा की चर्चा करने लगी कि बहन सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग में जाने से ऐसे लाभ होता है, उस व्यक्ति को ऐसे हानि होनी थी, परमात्मा की दया से ऐसे उसका बालक बच गया, उसको ऐसे लाभ होता हुआ, हमारे बहुत से भक्तों को ऐसे लाभ हुए, काफी कुछ चर्चा करती वो। लेकिन वो बहन मना कर गई थी कि मैं सत्संग में नहीं जा सकती बहन। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, सत्संग वाली बहन जाकर के चर्चा किया करती थी, उसकी चर्चा में उसको आनंद आने लग गया। फिर वो इंतजार करने लगी, बहन तू कल ना आई, आप आते हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहते हैं तुलसी पिछले पाप ते अरि चर्चा ना भावे, जैसे जोर के बेग ते भूख विदा हो जावे। प्रारंभ में जिनके पाप अधिक होते हैं प्रारंभ में भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती, और जैसे बुखार हो जाता है तो मनुखा दाख सेब संतरे रोटी कड़वी लगती है, और उसका ट्रीटमेंट क्या है कि कड़वी औषधि ही खाने से, यानी कुनीन खाने से, ना चाहते हुए भी खाने से वो धीरे धीरे बुखार उतर जाता है, फिर रोटियों की चाह बढ़ जाती है। ऐसे ही उस बहन की परमात्मा की वाणी सुन सुन के, सत्संग वाली बहन से और उस अनुपदेशी के भी उसका प्रभाव बन गया, उसका पाप कुछ नर्म हुआ, उसको चाह बढ़ी, भगवान की इच्छा बढ़ती बढ़ती। एक दिन बहन ने समझाई कि बहन देखो, आज तू लोक लाज कर रही है, संसार से डर के कि दुनिया क्या कहेगी, तू सत्संग में नहीं जाती, और सत्संग में ना जाने से आप अगले जन्म में पशु पक्षी बन जाओगी, तो ये कुल तेरा मदद नहीं करेगा, ना जाने कहां कुतिया बन के धक्के खाएगी, फिर कौन कुल तेरा साथ देगा। तो एक दिन उसका आवाज समझ में आ गई, कहने लगी बहन, बहुत सा समझा उस बहन ने परमात्मा से, ज्ञान सुना हुआ कि देख मेरा भाई ने कितना संघर्ष किया, ठाकुर घर में जन्म, जो घर से भी बेटियों को बाहर नहीं जाने देते थे, पर्दे में रखा करते थे, और उस मोर्चे को तोड़कर मीरा परमात्मा की तरफ अग्रसर हुई तो सफल हुई। आज मीराबाई का नाम एक बहुत ही श्रद्धा की दृष्टिकोण से लिया जाता है, और ये लोक लाज करने वाली ना जाने कितनी मर्गी बहन बेटियां, कोई भूतनी बन रही है, कोई कितना दुख पा रही है, कोई नहीं पूछता उनको। कहने का भाव यह है कि उस प्यारी आत्मा को एकदम प्रेरणा होगी, कहने लगी बहन मैं चल नाम लूंगी। उपदेश ले लिया, 10-20 दिन 15 दिन हो गए, तो एक दिन उसके मन में प्रेरणा हुई कि अभी मैं भी गुरुदेव को भोजन खिलाऊं, मेरा भी पुण्य बढ़े, क्योंकि यहां आने से पता चलता है, जैसे भक्तों को पता चलता है भाई अवन के लिए ज्योति का दान करने से ऐसा पुण्य होता है, भंडारे के लिए पाठ वाग्दी कराने से ये पुण्य होता है, तो धीरे धीरे परमात्मा व्यवस्था भी करता है, प्रेरणा भी करता है, तो फिर वो इच्छा बन जाती है कि मैं भी एक धर्म पाठ कराऊं। तो ऐसे उस बहन के ने जैसा वहां देखा कि सभी नंबर बांध रखे हैं और अपने टर्न पैसे भी अपना संतों और भक्तों को भोजन कराते हैं, बड़ा पुण्य होता है, तो उसके मन में प्रेरणा हुई कि मैं भी ऐसा ही करूं। तो उसने सभी बहनों से कहा मेरा भी नंबर लगा दो, तो जिसके जैसे भी नंबर बंधे हुए थे वो पूरे बंधे हुए थे पूरे महीने के, सभी ने यही लालच किया कि देखो गुरुदेव मुश्किल से आते हैं और ये पुण्य करने का अवसर हमें बड़ी ही मुश्किल से मिलता है, हम अपने टर्न से नहीं दे सकते। तो उस जिस बहन ने वो लगाई थी सत्संग में साथ लेकर गई थी, उसने कहा बहन ऐसे कर ले, अब ये एक दो दिन के बाद मेरा टर्न आएगा, उसमें सुबह का भोजन मैं करवा दूंगी, शाम का तू करवा दिए, आप करा देना। तो अब बड़ी खुश हुई, चलो एक एक समय का तो मालिक ने दया करी। तो फूली नहीं समावे, वो दिन आ गया, शाम के समय भोजन बनाया, इधर उधर से सारे सामग्री ले आई, बढ़िया भोजन तैयार किया। और क्या हुआ कि उसी दिन उसको एक भयंकर बुखार बन गया, इतना बुखार बन गया कि उससे 10 कदम भी चला नहीं जावे, खाना तो बना दिया पर चल की हिम्मत रही नहीं। उधर से उसका पुत्र जो था, वो इकलौता पुत्र, शराब पीता था। अब शराब पीने वाले को तो रोज चाहिए, शाम ने 100 रुपये वो लियावे कहां से। तो उसने फिर चोरी शुरू करेगा कि तब बकवाद करेगा, डाकी मारेगा और 36 फंड करेगा, जब वो नशा नशे का खर्चा उसका चलेगा। वो एक चोर गिरोह से मिल गया और वो चोरी चप्पा कर कहां है अपना गुटी शूटी लावे। तो उनकी चोरी करते करते उनकी इच्छा इतनी बढ़ गई, उनने सकीम बना रखी कि आज रात्रि में राजा के घर चोरी करेंगे और रानियों के ना गहने कोई कोई लाख रुपए के होते हैं और गहने उठा लाएंगे। तो सब ने अपने मियां मिठू बन गए और ये सकीम बनाई कि रात के 12 बजे इस मंदिर के पास आ जाना। एक मंदिर था तो सब अपनी अपनी तैयारी में लग गए। उधर से वो लड़का जब शाम के समय अपने घर गया और रात्रि के 12 बजे उसने अपने मित्रों से मिलना था, तो उसकी मां ने कहा कि बेटा, वो सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे आज मैंने बड़ी मुश्किल से ये टर्न मांग कर ली है, शाम का भोजन मैंने शाम शाम के भोजन की मेरे अरदास मंजूर हुई है और बेटा मुझे बुखार बहुत हो गया, मैं चलने में असमर्थ हूं, आप ये भोजन मेरे गुरुदेव का आश्रम में दे या बेटा। अब शाम के 8 बज गए, 7, 7:30, 8 बज गए गर्मियों के दिन, और उसने सोचा लड़के ने कि 2 किलोमीटर पर आश्रम, 1 घंटा जानकर 1 आण का, और 1 घंटा मनमाने वहां भोजन खाण में ला दे बाबा जी, और तेरे तब 12:30 बज जाएंगे, मैं जा नहीं पाऊंगा चोरी करने। तो उसने कहा कि मां, मैं किसी की रोटी राटी नहीं लेकर जाऊं कहीं पर, मैं खाना नहीं ले जाऊंगा, और मां तू वहां मत जाकर, दुनिया तेरे बारे में पता नहीं कौन क्या क्या कहता है, क्यों चक्कर में पड़ रही है, कुछ ना किता है। तो उसकी मां ने बोली बेटा, आज तो मेरा ये काम कर दे, मैं जिंदगी में तुझे फिर आज के बाद कुछ कदे नहीं कहूंगी तू किसी काम के लिए, और यदि तू आज ये भोजन नहीं पहुंचाएगा तो मुझे फिर आगे टर्न नहीं मिलेगी, क्योंकि सब मेरे पर आश्रित हैं कि वो रोटी लेकर आवेगी, कोई नहीं बनाएगा, साधु महात्मा भूखे सोएंगे। मां ने एक दो बार कहा पर वो नालायकती नहीं मानिया, ने बोला मेरे फालतू मत बोला है। अब वह मां बुरी तरह बैठकर रोने लगी और रोने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। अनु बड़ी बेटा देख, मेरा बहुत बुखार हो गया है, मैं तुझे झूठ नहीं बोल रही हूं, और यह दया कर दे, कृपा कर दे। उसने देखा अपनी मां का हाथ बहुत बुरी तरह रो रही थी, तो कहने लगा मां बुखार तो बहुत हो गया थे आपके। उसने सोचा मां बहुत ज्यादा रोएगी, दुख पाओगी, तो ना चल जल्दी जल्दी रोटी देकर आ जाता हूं, अभी तो 8 बजे हैं और थोड़ा शीघ्र आ जाऊंगा। तो सोच समझ कर वो उठा कर वो सारा सामान भोजन का आश्रम में चला गया। अब वो लड़की जब जाती थी सत्संग में, एक ही अर्ज किया करती थी अपने गुरुदेव के सामने कि गुरुदेव मेरा बेटा मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता, पता नहीं कहां रहता है, शराब पीता है, और कहती हूं तो मेरे से लड़ने लग जाता है, कति बिगड़ गया, गुरुदेव अपनी शरण में ले लो बच्चे को। तो बार बार यही कहती थी, गुरुजी कहते थे बेटा तू विश्वास ना तोड़िए, लगी रहे भगवान के चरणों में, अवश्य सुनेगा तेरी एक दिन। जब वो लड़का भोजन लेकर आश्रम में पहुंचा, छोटे छोटे आश्रम होते थे, झोपड़ी डाल रखी होती थी, 10-20 वृक्ष होते थे उसमें, और वहीं एक कुई काई बना देते थे स्नान करने के लिए, कुआ बना देते थे। तो सभी के मन में ये आया कि परमात्मा ने, गुरुदेव ने उस बहन की सुन ली, आज तो उसका बेटा आ गया सत्संग में। अब उसने पूछा भी कहां है तुम्हारे महाराज जी, भोजन ले आया हूं। तो कहने लगे वो भगत के बैठ जा भाई, गुरु जी स्नान करने गए। अब गुरुदेव स्नान करके आगे और गुरु जी से जाकर बताया कि गुरु जी आज तो रामों का लड़का आया है और आपने उसकी बड़ी सुनी, ये तो घना निकम्मा लड़का था, सत्संग के नाम से बहुत चिढ़ता था, बहुत रोती थी वह माँ बेटी माई, और आज यो रोटी लेकर आ गया आपकी। गुरु जी कहने लगे भाई बहुत अच्छा है, परमात्मा तो सबकी सुनते हैं, सच्ची श्रद्धा से जो लगा रहता है। तो गुरुदेव आए और बैठ गए, लड़का पास बैठा था। तो गुरु जी ने सोचा बेटा आज लड़का आया है सत्संग में, शायद यू ना आ पाता, ले इसको कुछ 2-4 बातें अच्छी अच्छी बता देता हूं ताकि इसकी रुचि बने। तो गुरु जी लागे समझान, बेटा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन परमात्मा के ने इसीलिए दिया है कि हम परमात्मा को याद करें, अपना कल्याण करावे, और जीवन सदा नहीं रहेगा। या इस तरह की कुछ चर्चा की तो नालायक बच्चा कहता महाराज जी रोटी खा ले जल्दी, मैंने देर हो है, मैंने तेरे भाषण की जरूरत को ना। अब वो महात्मा ने सोचा भाई ये तो सचमुच निकम्मा है बालक से, वह छोरी लड़की ठीक रोती है। तो महात्मा जी ने सोचा अपना क्यों माथा मारे डांगर के साथ, हमारा रोटी खा ले। वो खाना खा लिया तो दूसरे भक्त कहने लगे लो बर्तन साफ कर देते हैं और फिर ले जिए भाई। उसने तो रात के 12 बजे दिखे थे, अकदे तू पीछे रह जा, वो अकेले चोरी कर लिया और तुझे धन ना मिल रहा है। वो जूठे बर्तन डाल जो थैले में, नो बोला माफ धो लो, मेरी माफ धो लेगी आप वहां पर, ऐसे ले चला। वहां से डांक ठोक दी, नो भाग लिया दौड़ता हुआ जल्दी जल्दी आगे। तो जब वो चला आ रहा था तेजी से, एक कांटा चल गया उसके पैर में, कांटा लग गया और अंदर ही टूट गया अच्छा लंबा। अब उसके तो पैर ना टक्के, जब आधा सफर हो लिया तब उसको कांटा लग गया और पैर के अंदर ही टूट गया वो सूल, और उस पैर को वो टेक नहीं पा रहा है, पंजे पंजे रखता हुआ और धीरे धीरे आ रहा है लंगड़ाता हुआ, काफी समय लग गया। अब कांटा रात ने निकला को ना, पहले ऐसे औजार होया करते थे, श्याम ने कुछ बांधते उसके और सुबह फिर निकाला जाता, ऐसे कुछ व्यवस्था थी। अब उसका चोरी का प्रोग्राम तो टल गया, उसको बड़ा दुख हुआ, जाती अपनी माँ को भूंडी अच्छी बोला और 20 गाल दी, महाराज गुरु जी ती गया था, तेरे गुरु जी तो कहती है वहां बड़ा सुख होता है, हैं, और मेरा तो इतना दुख हो गया, मुझे तो नाश कर दिया मेरा तेरे गुरु जी का, कभी नहीं जाऊंगा, उसकी शकल भी नहीं देखूंगा, आज ही गया था जब मेरा कांटा लग गया, और तो आप कहते हो वहां पर ऐसे ऐसे होता है। अब वो माई रो रही है, अपनी किस्मत को कोस रही है कि मैं कितनी निकम्मी, कितनी मंदभागी हूं, मैं कितनी दुर्भाग्यन हूं, कितना दुर्भाग्य है मेरा कि हे भगवान आज ये, आज के बाद ये कभी ना खुद जाएगा ना मुझे जाने देगा, ऐसा निकम्मा बच्चा है ये, परमात्मा इसका कांटा भी आज ही लगना था निकम्मे का, मेरा ही दुर्भाग्य है और अब ये कभी मुझे जाने नहीं देगा। ये सोच के उठी बुखार में और कहा बेटा कहां लग गया कांटा, देखा वो तो ऐसी व्यवस्था होती थी पहले को, सरसों का तेल का कुछ ऐसे बांध देते थे उसके और सुबह नरम हो जाता, सुबह निकलवाऊंगी बेटा इतारा कर ले। अब वो लेट गया बालक, वहां तो नहीं जा सका पर सारी रात ऐसे बकवाद करता रहा, देख लिया तेरा गुरुजी ऐसे है और वैसे है, सब पाखंडी इकट्ठे हो रहे हैं, ये कर रखा। उधर से उनके साथियों ने अपने साथी की इंतजार की 12:30 तक, वो नहीं पहुंचा तो उसने अपने अपने सुनियोजित तरीके से समय पर जाकर के राजा के महल में चोरी करने की कोशिश की। तो उनकी अपनी सोच थी चोरी कर लेंगे, पर वहां तो व्यवस्था बहुत होती है, उन्होंने सैनिकों ने पकड़ लिया सिपाहियों ने, मंत्री के पास ले गए, मंत्री सुबह उठ राजा के पास लेकर गया, कहा राजन ये इतने खूंखार डाकू हैं, राजा के महल में चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, ये आम जनता को कैसे जीने देंगे जब राजा का खोप नहीं, इनको भयंकर सजा दी जाए। भयंकर सजा होती थी सूली तोड़ना। सूली कैसे तोड़ते थे, एक लंबा एक 3-4 फुट का 2-2.5 फुट का एक वो होता था ताकू सा श्री, यानी लंबा जैसे बाला सा बना दिया करते थे श्रीय का, और उसको एक चकला होता था जैसे जो रोटी बेलन का चकला होता है, इसका बड़ा साइज गोल गोल सा बना देते थे, उसके आर पार से वो निकलता था। उस चकले को उसके एंड पर रख देते थे ऐसे, और उस पर व्यक्ति को बैठा देती थी, वो अपने आप जब उस पर बैठाते ही धीरे धीरे एकदम नीचे को चल पड़ता था, और उस शरीर के लोड से अपने आप वो नीचे को आता रहता था, और उसके अंदर से आर पार सिर में से निकल जाता था, विषाक्त होता था, और वो फिर चिल्ला चिल्ला कर बुरी तरह तरफ तरफ के मरता था। ऐसे ये मौत दी जाती थी, ऐसे सजा दी जाती थी ऐसे अपराधियों को, खूंखार अपराधियों, इसको सूली तोड़ना कहते थे, सूली देना, फांसी, फांसी तो गले में डाल देते हैं, ये सूली तोड़। तो उससे पहले क्या करते थे कि पूरे नगर में उन अपराधियों को घुमाया करते थे राजा, पूरे नगर में पूरे आसपास के गांव में उनको घुमा के लाते थे, उनके गले में पट्टी बांध देते थे कि मैं अपराधी हूं, मैंने ये पाप किया है, आज मैं सूली तोड़, मुझे ये सजा मिलेगी, और भाई कोई और सुनता हो देखता हो तो अपराध मत करना। वो अपने मुख से भी बोलते चलते थे मैं अपराधी हूं, मैंने ये पाप किया है, तो उनका ऐसे उनको फट्टे लगकर गले में एक पंपलेट चिपका देते थे, और उनके मुख से भी बुलवाते थे बोलो, तो वो ऐसे उनको साथ लेकर के एक विशेष प्रकार का एक बैंड बाजा आवाज करते हुए ले चलते थे सैनिक, तो सबको पता चल जाता था कि आज किसी को भयंकर सजा दी जा रही है। अपने अपने घर से निकलकर सब देखा करते थे किसने क्या अपराध किया और इसको क्या सजा दी जाएगी। तो जो ही वो शोर शराबा होता हुआ आया समझ गए सभी, तो वो मां बेटा दोनों के दोनों, मां ने सुबह कांटा निकलवा दिया, अच्छी लंबी सूल लगी हुई थी, कांटा लंबा था, वो निकलवा दिया। तो दोनों मां बेटा अपने घर से बाहर आकर के ये देखने के लिए खड़े हो गए कि किसको क्या सजा दी जा रही है। तो जो ही वो उसके पास आए, उसके मित्र वही साथी जिनके साथ वो चोरी करने जाना था राजा के घर पे, और वो ये कह रहे हैं कि हम अपराधी हैं, हम राजा के घर चोरी करने की योजना बना रहे थे, आज शाम को 4 बजे हमें सूली दी जाएगी, कोई सुनता हो कोई देखता हो तो अपराध मत करना। अब वो तो चले गए आगे, और उधर से सैनिक उनके डंडे मार रहे हैं आगे, तो वो तो चले गए, मां अपने काम लगी। वो लड़का उसने विचार किया कि हे परमात्मा, यदि कल रात ने मेरा कांटा ना लगता तो मैं इनके साथ होता, और इनके साथ होता तो मुझे भी आज सूली तो टूट जाता, मैं मर जाता, मेरी मां का क्या होता। अब उसको फिर याद आई ये बातें, अब जब उसकी मां अपने काम लगी हुई थी, सब विचार करके अपनी मां के सीने से लगकर बुरी तरह रोने लग गया। उसकी मां ने सोचा क्या हो गया बेटे को, अचानक कहने लगी बेटा अब तो तेरा कांटा भी निकलवा दिया, रो क्यों रहा है। तो उसने सारी कथा बताई, मां बला होता आपके गुरुदेव का, बलाओ कल मैं आपका उनका भोजन लेकर गया तो मेरी जान बची, मां आज तेरा बेटा तेरे साथ नहीं होता। तो मां कहने लगी बेटा तू क्या बात कह रहा बेटा, क्यों नहीं होता, तू क्यों मर जाता, मेरा बेटा क्या चोर है। हां मां मैं चोरी भी करने लग गया था। फिर वह मां रोने लगी, अरे निकम्मे तो चोर भी हो गया था, हक मामा घना दुष्ट हो गया था, और शुक्र है तेरे गुरुदेव का कल मैं भोजन लेकर गया, मेरे यू कांटा ना लगता ना, मैं डटा नहीं डटू वो भाई। और आज मेरी माँ का क्या हाल होता, कैसे दिन टाइम पास करती माँ तू। तो वह माँ फिर अपने गुरुदेव का शुक्र मनाकर बहुत रोती है कि जैसे सुने थे प्रभु वैसे ही मिल गए, मेरे बच्चे की जान बचा दी। बच्चा बोला माँ मैं तेरे साथ चलूंगा, नाम लेकर आऊंगा। कहते मरता क्या नहीं करता, वो तो इसी बुंडी भयंकर मोतरन दिखाई दे रही उसको। अब कहते सोच सीधर मैं करूं अपने जन के काज, अपने आत्मा जिस जब उसका कांटा लग गया बेटे गए, मां के दिल पैनो बीती थी, भगवान को सुना तो है सुख देता है, मेरे बेटे का कांटा लग गया और अब मैं जा नहीं पाऊंगी। लेकिन फिर भी उस पुण्यात्मा ने अपने भाग्य को कोसा, गुरुदेव में दोष नहीं बताया। जो ऐसे समय पर गुरुदेव में दोष निकाल लेते हैं फिर उनकी सुनाई नहीं होती, उनको कम वो फिर हट जाते हैं भक्ति मार्ग से। यानी हमने अपने रोने धोने की क्रिया को भी सुचारू करके करना पड़ेगा, तब हम सफल होंगे। परमात्मा उस समय तो उसको लगे था कि कांटा लगे, मैं भी मुझे नहीं जाने देगा, भगवान के बनिया मेरे साथ, मैं ऐसी निकम्मी दुष्ट हूं। यानी इस तरह अपने को जो कोसते हैं उनको रिजल्ट अच्छा मिलता है। और कोई भगवान नहीं नो कह के दे रहा है उड़ा बता कांटा लग गया मेरे बेटे का न्यू हो गया, तो वो उसकी सुनवाई नहीं होती। चाहे वो बला टल भी जावे फिर उनकी श्रद्धा टूट जाती है। वो बला तो टली पहले के पुण्यक्रम से और आगे फिर ना संपर्क में रहने से, फिर भगवान से दूर हो जाने से, फिर ना जाने और कोई ऐसी बला आवे वो कदे नहीं टले। तो इसके लिए बताते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, सौ काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। एक ये तरीका बताया है कि आप जी को इतना नहीं समझ है बालक हो अभी, और इस तरह कोई आपत्तियां भी आ जाती हैं, इसका विकल्प बताया है कि इस द्वार को छोड़कर नहीं जाना। आप नहीं समझते कि आने वाला आला समय इसका रिजल्ट कैसा होगा, बालक हो आप तो अभी छोटी सी चोट कोई महसूस कर जाते हो मुझे क्या लाभ हुआ, नहीं बहुत लाभ हो रहा है। बहुत से ऐसे उदाहरण बहुत से हैं, लेकिन एक विशेष उदाहरण है कि एक बहन जींद में माता की पुजारिणी थी, दुर्गा की सेरा वाली की, और किसी को नहीं मानती थी वह, उसकी कट्टर पुजारिणी बचपन से ही, वो 50 साल के करीब हो रही थी उस समय तक, वो उसकी पूजा करती हुई आ रही थी, घर में भी सारे सुख थे, अच्छा पूरी व्यवस्था थी।